चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 24 आत्मा राम श्लोक की 61 व्याख्याएं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने पूर्व दिशा के क्षितिज की तरह व्यवहार किया। जहां आत्मा राम श्लोक का सूर्य उदय हुआ, उन्होंने विभिन्न अर्थों के रूप में इसकी किरणें बिखेरी और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंधकार को दूर किया। वे ब्रह्मांड की रक्षा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत भाव से इस प्रकार याचना की। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप इससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आत्मा राम श्लोक की 18 प्रकार से विविध व्याख्याएं कर चुके हैं। जो लोग आत्म संतुष्ट आत्मा राम हैं तथा बाह्य भौतिक इच्छाओं द्वारा आकृष्ट नहीं होते, वे भी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुण दिव्य और कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनके लक्षण इतने दिव्य और आकर्षक हैं। मैंने यह अद्भुत कथा सुनी है, इसीलिए मैं आपकी व्याख्या पुनः सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। यदि आप इसे फिर से कहें, तो मैं इसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं एक पागल व्यक्ति हूँ और सार्वभौम भट्टाचार्य दूसरे पागल व्यक्ति हैं। अतएव उन्होंने मेरे शब्दों को सच मान लिया। मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने उस संबंध में क्या कहा था, किंतु यदि तुम्हारी संगति से मेरे मन में कुछ आता है तो मैं उसे बतलाऊंगा। सामान्यतया मैं अपने आप कोई व्याख्या नहीं कर सकता, किंतु भले ही तुम्हारी संगति से कुछ अपने आप प्रकट हो जाए। इस श्लोक में 11 स्पष्ट शब्द हैं, किंतु जब उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक शब्द से विविध अर्थ झलकते हैं। ये 11 शब्द हैं, आत्मा राम च मुनियः निर्ग्रंथाः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुण तथा हरि। आत्मा शब्द के साथ विभिन्न अर्थ हैं, परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, दृढ़ता, बुद्धि तथा स्वभाव। आत्मा के पर्याय हैं शरीर, मन, परम सत्य, स्वभाव, धृति, बुद्धि तथा प्रयत्न। आत्मा राम शब्द उसका द्योतक है, जो इन सातों परम सत्य, शरीर, मन इत्यादि में आनंद लेता है। बाद में मैं आत्मा रामों के नाम गिनाऊंगा। हे सनातन, पहले मुनि इत्यादि अन्य शब्दों के अर्थ सुनो। सर्वप्रथम मैं उनके अलग अलग अर्थ बतलाऊंगा और बाद में उन्हें जोड़ूंगा। मुनि शब्द उसका सूचक है जो मननशील है, जो गंभीर या मौन रहता है, तपस्वी है, जो बड़े व्रत रखता है, जो सन्यासी है और जो संत है। ये मुनि शब्द के विविध अर्थ हैं। निर्ग्रंथ शब्द उसका सूचक है जो अज्ञान की भौतिक गांठ से छूट चुका है। यह उसका भी सूचक है जो वैदिक साहित्य में दिए गए समस्त विधि विधानों से विहीन है। यह ज्ञान से शून्य का भी सूचक है। निर्ग्रंथ उनका भी सूचक है जो अशिक्षित हैं, नीच हैं, दुराचारी हैं, असंयमित हैं और जो वैदिक साहित्य के प्रति आदर से रहित हैं। यह शब्द पूंजीपति तथा निर्धन का भी सूचक है। उपसर्ग निह का प्रयोग निश्चय, वर्गीकरण, निर्माण या निषेध के अर्थ में किया जाता है। ग्रंथ शब्द का अर्थ दंड, निबंध तथा शब्दों को जोड़ना है। कुरुक्रम शब्द का अर्थ है जिसका क्रम अर्थात कदम बड़ा हो। क्रम शब्द का अर्थ है पांव को आगे रखना अर्थात कदम, डग। क्रम के अन्य अर्थ भी हैं शक्ति, कांपना, विधि, तर्क तथा आगे बढ़कर बलपूर्वक आक्रमण करना। इस तरह वामन ने तीनों लोकों को कंपा दिया था। भले ही विद्वान व्यक्ति इस भौतिक जगत के सूक्ष्म परमाणुओं की गणना कर ले, फिर भी वह भगवान विष्णु की शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में भौतिक जगत के मूल से लेकर सत्य लोक तक के सारे लोकों को बिना किसी बाधा के वश में कर लिया। निसंदेह उन्होंने अपने कदमों के बल से प्रत्येक लोक को कंपा दिया। अपने सर्वव्यापी रूप के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया। वे अपनी असाधारण शक्ति से इस सृष्टि का धारण और पोषण करते हैं। वे अपनी माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन का पालन करते हैं। वे अपने 6 ऐश्वर्यों से अनेक वैकुंठ लोकों का पालन करते हैं। उरुक्रम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों की सम्यक रचना की है। क्रम शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यह शक्ति क्रमबद्ध योजना, डग, पग, चालन या कंपन के लिए प्रयुक्त होता है। कुरुवंती शब्द का अर्थ है वे दूसरों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि यह करना क्रिया का एक रूप है, अतः यह अन्यों के लिए किए गए कार्य को सूचित करता है। यह उस भक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो कृष्ण की तुष्टि के लिए की जाती है। कुर्वंती शब्द का यही तात्पर्य है। आत्मने पद के अंत्य तभी प्रयुक्त होते हैं जब कर्म का फल क्रियाओं के कर्ता को मिलता है जिसका सूचक न या स्वरित स्वर होता है। हेतु शब्द का अर्थ यह है कि किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है। उद्देश्य 3 हो सकते हैं। चाहे कोई उस फल को स्वयं भोगना चाहता हो, चाहे कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो या मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो, सर्वप्रथम हम भुक्ति भौतिक भोग शब्द लेते हैं। यह भुक्ति अनंत प्रकार की होती है। हम सिद्धि शब्द को भी ले सकते हैं जो 18 प्रकार की होती है। इसी तरह मुक्ति शब्द के 5 प्रकार हैं। अहेतुकी भक्ति भोग सिद्धि या मुक्ति द्वारा प्रेरित नहीं होती। जब मनुष्य इन सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है तब वह अत्यंत कौतुकी कृष्ण को अपने वश में कर सकता है। भक्ति शब्द के 10 अर्थ हैं। इनमें से एक है विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना, साधन भक्ति, और दूसरी भक्ति जिसे प्रेम भक्ति कहते हैं 9 प्रकार की है। इसके बाद भगवत प्रेम के लक्षणों की व्याख्या की गई है जो 9 प्रकार के हैं, रति से लेकर भाव और अंत में महाभाव तक। शांत भाव के भक्तों का कृष्ण के प्रति आकर्षण भगवत प्रेम तक बढ़ता जाता है और दास्य भाव के भक्तों का आकर्षण राग तक बढ़ता है। वृंदावन के भक्तगण जो कि भगवान के मित्र हैं, वे अपने प्रेम को अनुराग तक वर्धित कर सकते हैं। कृष्ण के माता पिता का वात्सल्य स्नेह अनुराग दशा के अंत को प्राप्त हो सकता है। वृंदावन की गोपियां जो कृष्ण से माधुर्य प्रेम द्वारा युक्त हैं, वे अपने प्रेम को महाभाव दशा तक ले जा सकती हैं। भक्ति शब्द के ये कुछ महिमा युक्त अर्थ हैं। अब आत्माराम श्लोक में आए स्तंभ भूत गुण शब्द का अर्थ सुनो। स्तंभ भूत के विभिन्न अर्थ होते हैं और गुण के उससे भिन्न अर्थ होते हैं। स्तंभ भूत शब्द दिव्य रूप से बहुत ही उन्नत है क्योंकि इसका अर्थ है दिव्य आनंद से पूर्ण। इस दिव्य आनंद के समक्ष ब्रह्म तादात्म्य से प्राप्त आनंद ब्रह्मानंद तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसलिए मेरे आनंद ने महासमुद्र का रूप धारण कर लिया है। अब इस समुद्र में स्थित होने के कारण मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि अन्य सारे तथा कथित आनंद बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान है। भगवान कृष्ण इतने महान है कि वे अन्य किसी से भी अधिक आकर्षक तथा प्रसन्न करने वाले हैं। वे आनंद के सर्वोत्तम धाम हैं। वे अपने बल से अन्य सारे आनंदों को भुलवा देने वाले हैं। शुद्ध भक्ति इतनी उत्कृष्ट होती है कि व्यक्ति इसके आगे भौतिक सुख भौतिक मुक्ति तथा योग सिद्धि का सुख आसानी से भूल जाता है। इसलिए भक्त कृष्ण की कृपा तथा उनकी असामान्य शक्ति तथा गुणों से बंध जाता है। जब मनुष्य दिव्य पद पर कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तब न शास्त्र के आधार पर कोई तर्क काम करता है, न ही ऐसे सिद्धांतों पर कोई विचार हो पाता है। यही उनका दिव्य गुण है जो समस्त दिव्य माधुर्य का सार है। कृष्ण के गुण दिव्य और अनंत हैं। समस्त आध्यात्मिक गुण दिव्य आनंद से पूर्ण हैं। ऐश्वर्य माधुर्य तथा करुणा जैसे कृष्ण के दिव्य गुण सब तरह से पूर्ण हैं। जहाँ तक अपने भक्तों के प्रति कृष्ण की वत्सलता का प्रश्न है, वे इतने वधान्य हैं कि वे अपने भक्तों को अपने आप तक को दे देते हैं। कृष्ण के गुणों की कोई सीमा नहीं है। भक्तगण उनके असाधारण सौंदर्य रसों तथा सुगंधी से आकृष्ट होते हैं। इस तरह वे विभिन्न दिव्य रसों में विभिन्न रूप से स्थित होते हैं। इसीलिए कृष्ण को सर्व आकर्षक कहा जाता है। चारों कुमार मुनियों सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार के मन भगवान को अर्पित तुलसी की सुगंध के कारण भगवान के चरण कमलों के प्रति आकृष्ट हो गए। जब कमल नयन भगवान के चरण कमलों से तुलसी दल तथा केसर की सुगंधि ले जाने वाली वायु उन कुमारों के नासारंध्रों से होकर हृदयों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निराकार ब्रह्म धारणा के प्रति आसक्त थे, सुखदेव का मन भगवान की लीलाओं के श्रवण में खो गया था। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, यद्यपि मैं पूर्णतया दिव्य पद को प्राप्त था, किंतु फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। इसीलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। मैं समस्त पाप फलों को नष्ट करने वाले व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। आत्म साक्षात्कार एवं आनंद से पूर्ण होने के कारण उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और लोगों पर दया करके उन्होंने श्रीमद् भागवत नामक दिव्य ऐतिहासिक ग्रंथ का वर्णन किया। यह ग्रंथ परम सत्य के दीपक के समान है। भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर दिव्य स्वरूप द्वारा समस्त गोपियों के मन को हर लेते हैं। हे कृष्ण, हम तो आपकी दासियों के रूप में आत्मसमर्पण कर चुकी हैं, क्योंकि हमने बालों की लटों से अलंकृत आपके सुंदर मुख को, आपके गालों पर लटकते आपके कुंडलों को, आपके होठों के अमृत को तथा आपके मृदु हास्य की सुंदरता को देखा है और साहस प्रदान करने वाली आपकी भुजाओं द्वारा हम आलिंगित भी हुई हैं। क्योंकि हमने आपके सुंदर तथा प्रशस्त वक्ष स्थल को देखा है, अतएव हम आपकी शरण में हैं। रुक्मणी आदि द्वारका की रानियां भी कृष्ण के दिव्य सौंदर्य तथा गुणों को सुनकर उनकी ओर आकृष्ट हो जाती हैं। हे अतीव सुंदर कृष्ण, मैंने दूसरों से आपके दिव्य गुणों के विषय में सुना है, जिसके कारण मेरे शरीर के सारे दुख जाते रहे हैं। यदि कोई आपके दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्रों को जीवन का सारा लाभ प्राप्त हो जाता है। हे अच्युत, आपके गुणों के विषय में सुनकर मैं लज्जा विहीन हो गई हूँ और मैं आपके प्रति आकृष्ट हो चुकी हूँ। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य वंशी बजाकर लक्ष्मी देवी आदि के भी मन को आकृष्ट कर लेते हैं। हे प्रभु, हम नहीं जानती कि काली सर्प को किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हो सका। ऐसा अवसर पाने के लिए तो लक्ष्मी जी ने सारी इच्छाएं त्याग कर सदियों तक कठोर व्रत लेकर तपस्या की थी। निसंदेह हम नहीं जानती हैं कि इस काली सर्प को यह सुअवसर कैसे प्राप्त हो सका। कृष्ण न केवल गोपियों एवं लक्ष्मियों के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं, अपितु वे तीनों लोकों की युवतियों के भी मनों को आकृष्ट करते हैं। हे भगवान कृष्ण, भला तीनों लोकों में वह कौन सी स्त्री होगी जो आपकी अद्भुत बांसुरी से निकले मधुर संगीत की लहरियों से मोहित न हो जाए? भला इस तरह कौन सी स्त्री अपने पति व्रता पथ से विचलित नहीं हो जाएगी? आपका सौंदर्य तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। आपके सौंदर्य को देखकर गौवे, पक्षी, पशु तथा वन के वृक्ष भी हर्ष के मारे जड़ हो जाते हैं। वृंदावन की स्त्रियां जो वयोवृद्धा हैं, कृष्ण के प्रति मात्र स्नेह से आकृष्ट होती हैं। वृंदावन के पुरुष कृष्ण के प्रति सेवक, मित्र तथा पिता के रूप में आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के गुण जड़ तथा चेतन को समान रूप से मोहने वाले हैं। यहाँ तक कि पक्षी, पशु तथा वृक्ष भी कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। यद्यपि हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु उनमें से दो मुख्य हैं। एक अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्त का सारा अमंगल हर लेते हैं और दूसरा अर्थ यह है कि वे भगवत प्रेम द्वारा मन को आकृष्ट करते हैं। जब भक्त जहाँ कहीं भी और जैसे कैसे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करता है तो भगवान हरि जीवन के चार प्रकार के तापों को हर लेते हैं। जिस प्रकार पूरी तरह प्रज्वलित अग्नि द्वारा सारा ईंधन जलकर राख हो जाता है, उसी तरह मेरी सेवा में लगने पर मनुष्य के सारे पाप कृत्य पूर्णतया दूर हो जाते हैं। इस तरह जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं तो धीरे धीरे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोध एवं उसी के साथ इन अवरोधों से उत्पन्न अज्ञान भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद मनुष्य श्रवण, कीर्तन आदि नौ प्रकार की भक्ति के माध्यम से अपने मूल भगवत प्रेम को पूरी तरह से प्रकट करता है। जब भक्त सारे भौतिक पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है तो कृष्ण उसके शरीर, मन तथा इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। इस तरह कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं और उनके दिव्य गुण अत्यंत आकर्षक हैं। जब मनुष्य का मन, इंद्रियां तथा शरीर हरि के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो वह भौतिक सफलता के चारों सिद्धांतों का परित्याग कर देता है। इस तरह मैंने हरि शब्द के मुख्य अर्थों की व्याख्या कर दी है। जब समुच्चय भूतक च तथा क्रिया विशेषण अपि ये दो शब्द इस श्लोक में जोड़ दिए जाते हैं तो इस श्लोक से जैसा भी अर्थ चाहे प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द की व्याख्या सात प्रकार से की जा सकती है। यह शब्द च तथा का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य को पिछले शब्द या वाक्य से जोड़ने, समाहार करने, अर्थ में सहायता करने, सामूहिक जानकारी देने, अन्य विकल्प सुझाने या श्लोक के चरण की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निश्चय के अर्थ में भी होता है। अपि शब्द के सात मुख्य अर्थ होते हैं, वे इस प्रकार हैं। यह शब्द अपि का प्रयोग संभावना, प्रश्न, संदेह, निंदा, समुच्चय, वस्तुओं का सही ढंग से संप्रयोग तथा अतिशयोक्ति के अर्थ में किया जाता है। मैं अब 11 अलग अलग शब्दों के विभिन्न अर्थ बतला चुका हूँ। अब मैं इस श्लोक का पूरा अर्थ कहूंगा, जैसा कि यह विभिन्न स्थलों पर उपयुक्त है। ब्रह्म शब्द परम सत्य का सूचक है, जो अन्य सभी सत्यों से श्रेष्ठ है। यह मूल स्वरूप है और इस परम सत्य के तुल्य अन्य कोई सत्य नहीं है। मैं उन परम सत्य को सादर नमस्कार करता हूँ। वे सर्वव्यापक तथा महान योगियों के लिए सर्वोच्च विषय हैं। वे अपरिवर्तनशील हैं और सबके आत्मा हैं। ब्रह्म शब्द का वास्तविक अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अद्वितीय है और जिनके बिना अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं कहते हैं कि वे ही अद्वैय ज्ञान हैं और वे ही निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। वे अद्वैय परम सत्य कृष्ण हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के परम सत्य हैं। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं विद्यमान रहता हूँ। कोई स्थूल, सूक्ष्म या आदि तत्व कुछ भी नहीं रहता। सृष्टि के बाद मैं ही प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और संहार के बाद केवल मैं ही शाश्वत रूप से रह जाता हूँ। आत्मा शब्द सर्वोच्च सत्य कृष्ण का सूचक है। वे सबके सर्वव्यापी साक्षी हैं और परम स्वरूप हैं। भगवान हरि प्रत्येक वस्तु के सर्वव्यापक आदि उद्गम हैं, इसलिए वे सबके परमात्मा हैं। परम सत्य कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के तीन साधन हैं। ये हैं दार्शनिक चिंतन, योगा अभ्यास तथा भक्तिमय सेवा। इन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। परम सत्य तो एक ही है, किंतु उन्हें समझने की प्रक्रिया के अनुसार वे ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान है, और निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा शब्द कृष्ण के सूचक हैं, किंतु उनके प्रत्यक्ष अर्थ क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के ही सूचक हैं। यदि कोई दार्शनिक चिंतन के मार्ग का अनुसरण करता है तो परम सत्य अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु यदि वह योग का अनुगामी है तो परम सत्य भगवान स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। भक्ति कर्म दो प्रकार का है, रागानुग स्वतः स्फूर्त तथा विधि विधान परक साधन भक्ति। रागानुगा भक्ति से मनुष्य को मूल भगवान अर्थात कृष्ण की प्राप्ति होती है, और विधि विधानों वैधि भक्ति से मनुष्य को भगवान का विस्तार रूप प्राप्त होता है। वृंदावन में रागानुगा भक्ति संपन्न करने से मनुष्य को मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रागानुगा प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए उपलब्ध हैं, किंतु वे ज्ञानियों कठिन तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा के तुल्य मानने वालों के लिए उतनी सरलता से सुलभ नहीं होते। वैधि भक्ति करने से मनुष्य नारायण का पार्षद बनता है और आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। जो भगवान कृष्ण के कार्यों की चर्चा करते हैं वे भक्ति के चरम पद को प्राप्त रहते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु तथा शारीरिक पुलक के लक्षण दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे लोग योग पद्धति के विधि विधानों का अभ्यास किए बिना ही कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनमें सारे आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं और वे वैकुंठ लोकों को जाते हैं जो हमारे ऊपर स्थित हैं। भक्तगण तीन वर्गों में विभाजित हैं, अकाम निष्काम मोक्ष काम मोक्ष के इच्छुक तथा सर्व काम भौतिक सिद्धि के इच्छुक। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह भले ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त भक्त हो या सारी भौतिक सुविधाएं चाहने वाला कर्मी हो अथवा मोक्ष की कामना करने वाला ज्ञानी हो, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए गंभीरता पूर्वक भक्ति योग का पालन करना चाहिए। उदार देह शब्द का अर्थ बुद्धिमान या विचारवान है, इसीलिए मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है। अन्य विधियां तब तक कोई फल प्रदान नहीं कर सकती जब तक उनकी संगति भक्ति से नहीं हो जाती, किंतु भक्ति इतनी प्रबल तथा स्वतंत्र है कि यह मनुष्य को सारे वांछित फल दे सकती है। भक्ति को छोड़कर आत्म साक्षात्कार की सारी विधियां बकरी के गले के तन के समान हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अन्य सारी विधियों को त्याग कर एकमात्र भक्ति को अपनाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं, आर्त दुखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम पूर्ण के ज्ञान की खोज करने वाला। भौतिकतावादी भक्तगण भक्ति तथा कृष्ण की पूजा तब करते हैं जब वे संकट में होते हैं या उन्हें धन की आवश्यकता होती है। जो लोग हर वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए वास्तव में उत्सुक रहते हैं तथा जो लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं वे अध्यात्मवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्ति चाहते हैं। पवित्र पृष्ठभूमि होने के कारण इन चारों प्रकार के लोगों को अत्यंत भाग्यवान मानना चाहिए। ऐसे लोग धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और शुद्ध भक्त बन जाते हैं। वैष्णव प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से ही मनुष्य भक्ति पद को प्राप्त होता है। इस पद पर मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं तथा अवांछित लोगों की संगति को त्याग देता है। इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमान लोग जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुछ संगति से मुक्त हो चुके हैं, पहले केवल एक बार सुनने पर भी भगवान की महिमा के श्रवण की उपेक्षा नहीं कर सकते। अपने आप को तथा दूसरों को ठगना कैतव कहा जाता है। इस तरह ठगने वाले ठगों की संगति करना दुःसंग कहलाता है, जिसका अर्थ है बुरी संगति। जो लोग कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य बातें चाहते हैं, वे भी दुःसंग कहलाते हैं। महामुनि व्यास देव द्वारा चार प्रारंभिक श्लोकों से विरचित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में अत्यंत दयालु हृदय वाले उन्नत भक्तों का वर्णन हुआ है और इसमें भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता के वंचना मार्गों का पूरा बहिष्कार हुआ है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांतों की स्थापना करता है, जिनसे जीव के तीन प्रकार के कष्ट वास्तविक रूप से दूर हो सकते हैं और वह संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च वर प्रदान कर सकता है। जो लोग विनीत होकर सेवा भाव से इस शास्त्र का संदेश ग्रहण करना चाहते हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। प्रोजित शब्द के प्रारंभ में प्र उपसर्ग विशेष रूप से मोक्ष कामी या ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोगों की ओर संकेत करता है। ऐसी इच्छा को ठग प्रवृत्ति में प्रमुख मानना चाहिए। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इसी रूप में की है। जब दयालु भगवान यह समझ लेते हैं कि मूर्ख भक्त भौतिक संपन्नता चाहता है, तो वे उसे अपने चरण कमलों में कृपा करके शरण देते हैं। इस तरह भगवान उसकी अवांछित इच्छाओं को ढक देते हैं। जब भी कोई कृष्ण से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो वे उसे अवश्य ही पूरी कर देते हैं, किंतु वे कोई ऐसी वस्तु प्रदान नहीं करते जिससे उसे बारंबार अपनी और इच्छाएं पूरी करने के लिए याचना करनी पड़े। जब मनुष्य अन्य इच्छाएं होने पर भी भगवान की सेवा में लगा रहता है तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करते हैं। जहां व्यक्ति अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है, साधु संग, कृष्ण कृपा तथा भक्ति की प्रकृति, ये तीनों समस्त अवांछित संगति को त्यागने तथा क्रमशः भगवत प्रेम का पद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस तरह मैं आत्मा राम श्लोक के सारे शब्दों की व्याख्या करता चलूंगा। यह स्मरण रहे कि ये सारे शब्द कृष्ण के दिव्य गुणों का आस्वादन कराने के निमित्त हैं। मैंने इस श्लोक का अर्थ इंगित करने के लिए ही इतनी सारी व्याख्याएं की हैं। अब मैं इस श्लोक का वास्तविक अर्थ कहने जा रहा हूँ। ज्ञान मार्ग के उपासक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रह्म उपासक, जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं, तथा दूसरे मोक्षाकांक्षी, जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों के तीन प्रकार हैं। साधक, ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहने वाले तथा निर्विशेष ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त, भक्ति से रहित मानसिक चिंतन के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु यदि भक्ति संपन्न की जाती है तो स्वतः ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। विचित्र बात है कि जो भक्ति करता है वह निर्विशेष ब्रह्म पद से दूर हटता जाता है। उसे कृष्ण की सेवा में लगने के लिए दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है। भक्त का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने पर मनुष्य कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण कर सकता है। कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने मात्र से मनुष्य उनकी सेवा में लगकर शुद्ध भक्त बन जाता है। निर्विशेष ब्रह्म में मग्न रहने वाला मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। तब वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार सदैव निर्विशेष ब्रह्म के विचार में डूबे रहते थे और इस तरह ब्रह्मवादी थे, फिर भी वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा गुणों के द्वारा आकृष्ट हुए थे, इसीलिए बाद में वे कृष्ण भक्त बन गए। चारों कुमारों के मन कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध से आकृष्ट हो गए। इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर वे शुद्ध भक्ति में लग गए। जब कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल तथा केसर की सुगंधि को ले जाने वाली वायु उन ऋषियों कुमारों के नासारंध्रों से होकर उनके हृदयों में पहुंची तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त होते हुए भी उन्होंने अपने शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव किया। श्रील व्यास देव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए। इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर वे भी भक्त बन गए और उनकी सेवा करने लगे। भगवान की दिव्य लीलाओं द्वारा अत्यधिक आकृष्ट होने पर श्रील सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण भावना से उत्तेजित हुआ। अतः वे अपने पिता की कृपा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। नौ योगीश्वर योगेंद्र जन्म से ही परम सत्य के निर्विशेष दार्शनिक थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी तथा महर्षि नारद से कृष्ण के गुणों के विषय में सुना तो वे भी कृष्ण भक्त बन गए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उन नवो योगेंद्रों की भक्ति का पूरा वर्णन मिलता है जिन्होंने भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर भक्ति की। नवो योगेंद्र ब्रह्मा जी के सानिध्य में गए और उनसे उन्होंने उपनिषदों का वास्तविक अर्थ सुना। यद्यपि वे पहले से वैदिक ज्ञान के जानकार थे, किंतु ब्रह्मा के मुख से कृष्ण भावना के विषय में सुनकर वे अत्यंत पुलकित हुए। इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण के निवास स्थान द्वारका में प्रविष्ट होना चाहा। इस तरह अंत में वे रंग क्षेत्र नामक स्थान को प्राप्त कर सके। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोग भी तीन प्रकार के होते हैं। वे जो मुक्त होना चाहते हैं, वे जो पहले से मुक्त हैं, तथा वे जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। इस भौतिक जगत में अनेक लोग हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं और इसके लिए वे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। जो लोग भवबंधन से छूटना चाहते हैं, वे भयानक रूप वाले देवताओं की पूजा करना बंद कर देते हैं। ऐसे शांत भक्त जो देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के विविध रूपों की पूजा करते हैं। देव पूजा से आसक्त लोग यदि सौभाग्यवश भक्तों की संगति पा जाते हैं तो उनकी सुप्त भक्ति तथा भगवान के गुणों के प्रति उनका अनुराग धीरे धीरे जागृत हो उठता है। इस तरह वे भी कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और मुक्ति तथा निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा का परित्याग कर देते हैं। हे महाविद्वान भक्त, यद्यपि इस भौतिक जगत में अनेक दोष हैं, किंतु एक तो अवसर है और वह है भक्तों की संगति। ऐसी संगति से अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। इसी सद्गुण के कारण ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा निर्बल पड़ गई है। नारद जैसे महामुनि की संगति से शौनक तथा अन्य बड़े बड़े ऋषियों ने मोक्ष की इच्छा त्याग दी और कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लग गए। कृष्ण के दर्शन या कृष्ण की विशेष कृपा पाने मात्र से मनुष्य मोक्ष की इच्छा छोड़ सकता है। कृष्ण के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होने पर मनुष्य उनकी सेवा में लग सकता है। इस द्वारका धाम में मैं आध्यात्मिक आनंद के मूर्तिमान रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा आकृष्ट हो रहा हूँ। केवल उनका दर्शन करके मैं परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ओह, निर्विशेष अनुशीलन द्वारा स्वरूप सिद्ध बनने के प्रयास में मैंने कितना समय गंवा दिया है, यही मेरे संताप का कारण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस जीवन में मुक्त हो चुके होते हैं, कुछ तो भक्ति करके और कुछ ज्ञान की विधि द्वारा मुक्त बनते हैं। जो लोग भक्ति द्वारा मुक्त बनते हैं, वे कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा अधिकाधिक आकृष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार वे उनकी सेवा में लग जाते हैं। जो लोग शुष्क ज्ञान द्वारा मुक्त बनते हैं, वे अंत में अपने अपराधी कृत्य द्वारा पुनः नीचे गिर जाते हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपकी भक्ति के बिना ही इस जीवन में अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। यद्यपि वे विविध कठोर तपस्याएं करते हैं और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। जो दिव्य पद को प्राप्त है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। उस स्थिति में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यद्यपि मैं अद्वैत पथ पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, तो भी मैं बल पूर्वक किसी नटखट बालक द्वारा, जो सदैव गोपियों के साथ परिहास करता रहता है, दासी बना दिया गया हूँ। जिसने भक्ति द्वारा अपना वैधानिक पद प्राप्त कर लिया है, उसे इसी जीवन में ही दिव्य देह प्राप्त हो जाती है। वह कृष्ण के दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित होने पर उनके चरण कमलों की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाता है। जब महाविष्णु विश्राम करते हैं और विराट जगत को समेट लेते हैं, विनष्ट कर देते हैं, तब सारे जीव तथा अन्य शक्तियां उन्हीं में समा जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग करने के बाद अपने सनातन मूल स्वरूप में स्थित रहना। कृष्ण भावना अमृत का विरोध करके मनुष्य पुनः माया के प्रभाव द्वारा भक्त तथा भयभीत हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक भक्तिमयी सेवा संपन्न करने से मनुष्य माया से मुक्त हो जाता है। जब जीव कृष्ण से पृथक भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है, तो वह भयाक्रांत हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग कर दिया जाता है। उसकी जीवन धारणा विपरीत हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण का नित्य दास बनने के बजाय कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। इसे विपर्यह स्मृतिह कहते हैं। इस भूल का निराकरण करने के लिए जो मनुष्य वास्तव में विद्वान एवं उन्नत होता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु पूज्य अर्चा विग्रह तथा जीवन के उद्गम के रूप में करता है। इस तरह वह अनन्य भक्ति की विधि द्वारा भगवान की पूजा करता है। तीन गुणों से युक्त मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसको सरलता से पार कर सकते हैं। भक्ति के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो एकमात्र भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जाती है। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई इसे केवल शुष्क ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता है कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है, तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। केवल कष्टप्रद तथा अशुभ कार्य कलाप ही उसके हाथ लगते हैं। उसके कार्य उसी तरह है जैसे दान से रहित भूसे को पीटना। उसका सारा श्रम व्यर्थ जाता है। हे कमल नेत्रों वाले, जो लोग आपकी भक्ति के बिना ही इस जीवन में अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। यद्यपि वे कठोर तपस्याएं करते हैं और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। यदि कोई चारों वर्णों तथा आश्रमों में ही अपनी स्थिति बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक में जाता है। जब कोई भक्ति करने से सचमुच मुक्ति पा लेता है, तो वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहता है। निर्विशेष ब्रह्म तेज में निमग्न मुक्त आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। ये छह प्रकार के आत्मा राम कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं च लगाकर सूचित की जाती हैं और वे अपि निसंदेह का भी अर्थ वहन करते हैं। छहों प्रकार के आत्मा राम बिना किसी अन्य अभिलाषा के कृष्ण की भक्ति करते हैं। मुनयः तथा संतः शब्द उन लोगों के सूचक हैं जो कृष्ण का ध्यान करने में अत्यंत अनुरक्त हैं। निर्ग्रंथा शब्द का अर्थ है बिना अज्ञान के तथा विधि विधान से रहित। इनमें से जो भी अर्थ उपयुक्त हो उसे लिया जा सकता है। च शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में करने से भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य भी अर्थ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आत्मा रामस्य शब्द की छह पुनरावृत्तियां की जा सकती हैं, किंतु केवल च शब्द जोड़ने से पांच आत्मा राम लुप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा राम शब्द की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल एक पर्याप्त है और यही एक शब्द छह व्यक्तियों को सूचित करता है। एक ही रूप तथा विभक्ति होने पर केवल अंतिम शब्द को रखा जाता है। उदाहरणार्थ रामश्च 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 इत्यादि के लिए रामाह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द च के प्रयोग से यह इंगित किया जाता है कि सारे आत्मा राम तथा संत कृष्ण की सेवा करते हैं और उन्हें पूजते हैं। निर्ग्रंथा के साथ अपि जुड़ने से संभावना व्याप्त होती है। इस तरह मैंने आत्मा राम श्लोक के सात प्रकार के अर्थ समझाने की चेष्टा की है। जो योगी अपने अंतर में परमात्मा की पूजा करता है वह भी आत्मा राम कहलाता है। आत्मा राम योगियों के दो प्रकार सगर्भ तथा निगर्भ कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं। अतः परमात्मा के उपासकों के छह प्रकार हुए। कुछ योगी भगवान का चिंतन अपने हृदयों के भीतर छह इंच माप वाले भगवान के रूप में करते हैं। भगवान के चार हाथ हैं, जिनमें वे शंख गदा चक्र तथा पद्म धारण किए रहते हैं। जो योगी अपने हृदय में विष्णु के इस रूप की पूजा करते हैं वे सगर्भ योगी कहलाते हैं। जब किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम होता है तो उसका हृदय भक्ति योग से द्रवित हो उठता है और उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उसके शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं और उत्सुकता वश उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह उसे आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जब हृदय अत्यधिक व्यथित होता है तो चिंतन मग्न मन ध्यान के लक्ष्य से उसी तरह धीरे धीरे विलग होने लगता है जिस तरह मछली पकड़ने का कांटा। योग की प्रगति के इन तीन विभागों योगारूक्षु योगारूढ़ तथा प्राप्त सिद्धि के द्वारा योगियों के छह भेद हो जाते हैं। जो संत लोग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे योगा अभ्यास करते हैं और उसके नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे आसन तथा प्राणायाम करते हैं। जो लोग पहले से इस पद को प्राप्त हुए रहते हैं वे ध्यान करते हैं और अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं। वे समस्त भौतिक कार्यों को त्याग कर अपने मन को संतुलित शम रखते हैं। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने में कोई रुचि नहीं लेता और समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है तो उसे योगारूढ़ कहा जाता है। जब शुद्ध योगी भक्तों की संगति करता है तो वह भगवान के दिव्य गुणों से आकृष्ट होने के फल स्वरूप कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। यहाँ पर च तथा अपि शब्दों के अर्थों का प्रयोग किया जा सकता है। मुनि तथा निर्ग्रंथ शब्दों के अर्थ पहले जैसे ही हैं। अहेतुकी शब्द सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उरु क्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह मैंने आत्मा राम श्लोक के अर्थ 13 प्रकारों से बताए हैं। ये 13 प्रकार के योगी तथा मुनि शांत भक्त कहलाते हैं क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति शांत अवस्था में करते हैं। कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ मन होता है। उस दशा में आत्मा राम शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो मानसिक चिंतन द्वारा तुष्ट रहता है। जब ऐसा व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की संगति करता है तो वह कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति शुरू कर देता है। जो लोग महान संत योगियों का अनुसरण करते हैं, वे योग आसन विधि अपनाते हैं और अपने उदर से पूजा शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ब्रह्म को स्थित बतलाया जाता है। ऐसे लोग शार्क राक्ष कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे स्थूल देहात्मक बुद्धि में स्थित हैं। कुछ लोग अरुण ऋषि के भी अनुयायी हैं। इस पथ का अनुसरण करते हुए ये लोग नाड़ियों की क्रिया का निरीक्षण करते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे हृदय तक पहुंचते हैं, जहां सूक्ष्म ब्रह्म अर्थात परमात्मा स्थित रहते हैं। तब वे उनकी उपासना करते हैं। हे असीम अनंत, इन लोगों से बेहतर तो वे योगी हैं जो अपने शिरोभाग से आपकी पूजा करते हैं। वे उधर से प्रारंभ करके हृदय से होकर सिर के ऊपरी भाग तक पहुंच जाते हैं और ब्रह्म रंध्र से होकर निकल जाते हैं, जो खोपड़ी के ऊपर एक छिद्र है। इस तरह ये योगी सिद्धि पद को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा प्रवेश नहीं करते। योगी गण कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर महान मुनि बन जाते हैं। तब वे योग विधि से बाधित नहीं होते और वे अनन्य भक्ति करने लगते हैं। आत्मा शब्द का एक अर्थ प्रयत्न भी है। कुछ संत कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा आकर्षित होकर उनकी सेवा करने योग्य बनने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। ब्रह्म लोक तथा सत्य लोक से पाताल लोक तक ऊपर नीचे घूमने पर भी दिव्य पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि कोई सचमुच बुद्धिमान तथा विद्वान है तो उसे उस दुर्लभ दिव्य पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। 14 लोकों में जो भौतिक सुख उपलब्ध हो सकता है, उसे काल के प्रभाव से उसी तरह प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार काल क्रम में दुख प्राप्त होता है। किंतु चूंकि आध्यात्मिक चेतना को इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतएव इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए उत्सुक हैं, जिनकी बुद्धि अचल है और विचलित नहीं होती, वे निश्चय ही वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। च शब्द का प्रयोग अपि के स्थान में किया जा सकता है, जो किसी बात पर बल देने वाला है। इस तरह इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना 2 कारणों से अतीव कठिन है। पहला यह कि जब तक कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं होता, तब तक उसे भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती, भले ही वह दीर्घ काल तक भक्ति क्यों न करता रहे। दूसरा यह कि कृष्ण सरलता से भक्ति की पूर्णता प्रदान नहीं करते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। आत्मा का दूसरा अर्थ धृति या धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक प्रयास करता है वह आत्मा राम है। ऐसा व्यक्ति धैर्य पूर्वक भक्ति में लगता है। मुनि शब्द के अर्थ पक्षी तथा भौरा भी है। निर्ग्रंथ शब्द मूर्ख लोगों का सूचक है। कृष्ण की कृपा से ऐसे जीव जब किसी साधु गुरु के संपर्क में आते हैं तो वे भक्ति में लग जाते हैं। हे माता, इस जंगल में सारे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद किए हैं और किसी अन्य ध्वनि से आकृष्ट हुए बिना केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसे पक्षी जरूर मुनियों जैसे पद पर ही होंगे। हे मूर्ति मंत सौभाग्य, हे आदि पुरुष, ये सारे भौरे आपके दिव्य यश का गान कर रहे हैं, जिससे समग्र ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। निसंदेह ये जंगल में आपके पथ का अनुसरण कर रहे हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः ये सभी साधु पुरुष हैं, किंतु अब इन्होंने ब्रह्मरों का रूप धारण कर रखा है। यद्यपि आप मनुष्य की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, किंतु वे भूल नहीं पाए कि आप उनके आराध्य देव हैं। जल में सारे सारस तथा हंस कृष्ण की बांसुरी के मधुर गीत से मोहित हो रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट पहुंचकर पूरे मनोयोग से उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे, वे तो अपनी आंखें बंद किए हैं और पूर्णतया शांत हो गए हैं। मैं परम शक्तिमान उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनके भक्तों की शरण ग्रहण करने से किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन और खश तथा अन्य जातियां भी जो पाप कर्म में निरत रहती हैं, शुद्ध हो सकती हैं। धृति शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोई ज्ञान में परिपूर्ण होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेने के बाद भक्त के सारे भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं, तब वह पूर्णता के उच्चतम पद महापूर्ण को प्राप्त करता है। धृति वह पूर्णता है जो दुख की अनुपस्थिति में और भगवत ज्ञान प्राप्त होने तथा शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त होने पर अनुभव की जाती है। लक्ष्य प्राप्त न कर सकने अथवा किसी प्राप्त की हुई वस्तु की क्षति से उत्पन्न संताप इस पूर्णता को प्रभावित नहीं करते। कृष्ण का भक्त कभी दुखी अवस्था में नहीं रहता, न ही उसे कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा होती है। वह अनुभवी तथा उन्नत होता है। वह कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का अनुभव करता है और उन्हीं की सेवा में पूर्णता के साथ लगा रहता है। मेरी सेवा करने से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद मेरे भक्त चार प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते जो ऐसी सेवा से सरलता से प्राप्त की जा सकती है, तो फिर वे ऐसे आनंदों को क्यों स्वीकार करेंगे जो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सारे जीव अपने चंचल स्वभाव के कारण विचलित रहते हैं, किंतु भक्त इंद्रियों के स्वामी भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति धैर्य तथा सहिष्णुता में स्थित माना जाता है। च शब्द बल देने के लिए है और अपि शब्द समुच्चय के रूप में प्रयुक्त है। इस प्रकार यह समझना होगा कि मंद प्राणी भी पक्षी तथा निरक्षर सहनशील हो सकते हैं और कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। आत्मा शब्द विशेष प्रकार की बुद्धि के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि सामान्यतया समस्त जीवों में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, अतः वे इसमें आ जाते हैं। हर जीव में किसी न किसी प्रकार की बुद्धि रहती है और जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह आत्मा राम कहलाता है। आत्मा राम के दो प्रकार हैं, एक तो विद्वान तथा दार्शनिक और दूसरा अशिक्षित तथा मूर्ख व्यक्ति। कृष्ण की कृपा एवं भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति के प्रति व्यक्ति का आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है, अतः वह सब कुछ त्याग कर कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अपने आप को नियुक्त कर देता है। मैं कृष्ण हर वस्तु का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान इसे भली भांति जान लेते हैं वे प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। स्त्रियां शूद्र असभ्य पहाड़ी जातियां शिकारी तथा अन्य अनेक निम्न कुल में उत्पन्न लोगों के साथ ही पक्षी तथा पशु भी अद्भुत प्रकार से कार्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भक्तों के पथ का अनुसरण करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि अज्ञान का सागर विस्तृत है फिर भी वे इसे पार कर सकते हैं। तो फिर जो लोग वैदिक ज्ञान में उन्नत हैं, उनके लिए कौन सी कठिनाई है? इन सब बातों पर विचार करते हुए जब कोई कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होता है तो कृष्ण उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह धीरे धीरे भगवत सेवा में पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकता है। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भक्ति पद तक ऊपर उठने के लिए निम्नलिखित पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों की संगति करना, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वृंदावन या मथुरा में निवास करना। यदि कोई इन पांच बातों में से किसी एक में थोड़ा भी अग्रसर होता है और बुद्धिमान होता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम क्रमशः जागृत हो उठता है। इन पांचों सिद्धांतों की शक्ति अतीव अद्भुत है और समझनी मुश्किल है। उनमें श्रद्धा के बिना ही निरपराध व्यक्ति उनके साथ रंच मात्र संबंध होने पर अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकता है। यदि मनुष्य वास्तव में उदार तथा बुद्धिमान है तो वह आगे बढ़ सकता है और भक्ति में पूर्ण बन सकता है, भले ही उसमें भौतिक इच्छाएं क्यों न हो और चाहे वह किसी स्वार्थ से भगवान की सेवा क्यों न करता हो। कोई चाहे सकाम हो या अकाम अथवा भगवान से तादात्म्य का इच्छुक हो, वह तभी बुद्धिमान है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि जब कोई इसमें लग जाता है तो वह क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से ही संभव होता है। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो वे अवश्य ही वैसा करते हैं, किंतु वे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करते जिसका उपभोग किए जाने के बाद अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारंबार याचना करनी पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं होती हैं, किंतु वह भगवान की सेवा में लगता है तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। आत्मा शब्द का अन्य अर्थ मनुष्य का लाक्षणिक स्वभाव है, जो भी अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है वह आत्मा राम कहलाता है। अतः सारे जीव भी चाहे चर हो या अचर आत्मा राम कहलाते हैं। हर जीव का मूल स्वभाव अपने आप को कृष्ण का सनातन सेवक समझना है, फिर भी माया के वशीभूत होकर वह अपने आप को शरीर समझता है और इस तरह उसकी मूल चेतना ढक जाती है। उस दशा में च शब्द का अर्थ एव होता है, अपि शब्द को समुच्चय के अर्थ में लिया जा सकता है। इस तरह चलोक का पाठ होगा आत्मा रामा एव अर्थात सभी तरह के जीव भी कृष्ण की पूजा करते हैं। इन जीवों में चार कुमारों जैसे महापुरुष, निम्न जाति के मूर्ख जन, वृक्ष, पौधे, पक्षी तथा पशु भी सम्मिलित हैं। व्यास, शुक तथा चारों कुमारों की भक्ति पहले से विख्यात रही है। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार वृक्ष एवं पौधे जैसे अचर जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा का पात्र है, जिसमें व्यास देव, चारों कुमार, शुकदेव गोस्वामी, निम्न योनि के प्राणी, वृक्ष, पौधे तथा पशु सम्मिलित हैं। कृष्ण की कृपा से वे ऊपर उठते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं। वृंदावन की यह भूमि व्रज भूमि आज धन्य है, क्योंकि आपके चरण कमलों ने इसकी मिट्टी तथा घास का स्पर्श किया है। आपकी अंगुलियों के नखों ने वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है तथा आपकी कृपा मई आंखों ने नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर दृष्टि डाली है। आपकी भुजाओं ने गोपियों का आलिंगन किया है और लक्ष्मी तक यही चाहती है। अब ये सभी धन्य हैं। हे सखी, कृष्ण तथा बलराम दोनों ही अपनी गौवों के आगे आगे अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर जा रहे हैं। उन दोनों के पास रस्सियां हैं जिनसे गौवे दुहते समय वे उनके पिछले पांव बांध देते हैं। जब वे अपनी बांसुरियां बजाते हैं तो सारे चर प्राणी चकित रह जाते हैं और अचर प्राणी उनके मधुर संगीत से अतीव हर्ष का अनुभव करते हैं। ये सारी बातें निश्चय ही अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। सारे पौधे लताएं तथा वृक्ष कृष्ण प्रेम के कारण फूल फलों से लदे थे, इससे वे झुके जा रहे थे। वे इस प्रकार के अगाध कृष्ण प्रेम से इतने प्रेरित थे कि वे निरंतर मधु की वर्षा कर रहे थे। गोपियों ने वृंदावन के सारे जंगलों को इसी प्रकार देखा कि रात हूण आंध्र पुलिंद पुक्कश आभीर शुंभ यवन खश जातियां तथा वे भी जो पाप कर्म करने के अभ्यस्त हैं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि भगवान परम शक्तिमान है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैंने पहले ही आत्मा राम श्लोक के 13 अर्थ बतला दिए हैं। अब ये 6 और हैं। इन्हें मिलाकर कुल 19 हो जाते हैं। मैं अभी तक 19 भिन्न भिन्न अर्थ कर चुका हूँ। अब अन्य अर्थ सुनो। आत्म शब्द शरीर का भी द्योतक है और इसे 4 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। देहात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने ही शरीर को ब्रह्म समझकर पूजता है, किंतु जब वह भक्त के संपर्क में आता है तो वह इस गलत ख्याल को त्याग देता है और कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। जो लोग महान संत योगियों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे यौगिक आसन करते हैं और उधर से पूजा करना प्रारंभ करते हैं जहां ब्रह्म का वास बताया जाता है। ऐसे लोग शार्क राक्ष कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे स्थूल देहात्मक बुद्धि में स्थित हैं। कुछ आरुण ऋषि के भी अनुयायी होते हैं। वे उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए नाड़ियों के कार्य का अवलोकन करते हैं। इस तरह वे क्रमशः हृदय तक पहुंचते हैं, जहां सूक्ष्म ब्रह्म या परमात्मा स्थित हैं। तब वे उनकी उपासना करते हैं। हे अनंत, इनसे अच्छे तो वे योगी जन हैं जो अपने शिरोभाग से आपकी पूजा करते हैं। उधर से चल करके हृदय होते हुए वे सिर के ऊपरी भाग तक पहुंचते हैं, जहां से वे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं, जो खोपड़ी की चोटी पर स्थित छिद्र है। इस तरह ये योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं पड़ते। जो लोग देहात्मक बुद्धि में स्थित रहते हैं, वे मुख्यतः सकाम कर्म में संलग्न होते हैं। जो लोग यज्ञ तथा अनुष्ठान करते हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं, किंतु किसी तरह जब वे शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तब वे अपना सकाम कर्म त्याग कर भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाते हैं। हमने अभी अभी यह सकाम कर्म अग्नि होम शुरू किया है, किंतु अपने कर्म में अनेक त्रुटियों के कारण हम इसके फल के विषय में निश्चित नहीं हैं। धुएं से हमारे शरीर काले पड़ गए हैं, किंतु हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के उस अमृत से सचमुच प्रसन्न हैं, जिसे आप वितरित कर रहे हैं। उच्च लोक जाने के लिए कठोर तपस्या करने वाले तपस्वी भी इसी श्रेणी में आते हैं। जब ऐसे व्यक्ति किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वे सारे ऐसे अभ्यास को त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। प्रेमा भक्ति का आस्वाद गंगा नदी के जल के समान है, जो भगवान कृष्ण के चरणों से निकलती है। जो लोग तपस्या करते हैं, उनके द्वारा अनेक जन्मों के संचित पाप कर्मों का फल इस आस्वाद से नित्य प्रति घटता जाता है। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के अधीन श्रम करता है, तब तक उसे अनेका अनेक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति आत्मा राम कहलाता है। जब ऐसे आत्मा राम पर कृष्ण की कृपा होती है, तो वह अपनी तथा कथित आत्मतुष्टि त्याग देता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते समय ध्रुव महाराज ने कहा, हे प्रभु, क्योंकि मैं ऐश्वर्य से युक्त भौतिक पद की खोज में था, इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रहा था। अब मैंने आपको पा लिया है, जो देवताओं, संतों तथा राजाओं को भी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। मैं तो कांच के टुकड़े की खोज कर रहा था, किंतु बदले में मुझे अमूल्य रत्न मिल गया है। अतः मैं इतना संतुष्ट हूँ कि अब मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांगना चाहता। पहले बताए गए श्लोक के अन्य 19 अर्थों के साथ यह आत्मा राम शब्द 4 और अर्थ देता है। जब इसका अर्थ देहात्मक बुद्धि के अधीन श्रम करता हुआ लिया जाता है, इससे कुल मिलाकर 23 अर्थ हो जाते हैं। अब अन्य 3 अर्थ सुनो, जो अत्यंत उपयुक्त हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, च का प्रयोग समुच्चय के अर्थ में भी किया जा सकता है। इस अर्थ के अनुसार सारे आत्मा राम तथा मुनि कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। समुच्चय के अतिरिक्त भी च शब्द का एक अन्य अर्थ होता है। निर्ग्रंथा शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकता है और अपि शब्द निश्चयात्मकता के लिए, उदाहरणार्थ रामश्च कृष्णश्च का अर्थ यह है कि राम तथा कृष्ण दोनों जंगल में विचरण करना पसंद करते हैं। च शब्द का अर्थ और भी है, जिसका अभिप्राय है एक ही समय एक गौण कार्य का संपन्न होना। च के इस अर्थ को समझना अनवाच्य कहलाता है। एक उदाहरण है, हे ब्रह्मचारी, भिक्षा मांगने जाओ और साथ ही गौवों को ले आओ। वे संत पुरुष जो सदैव कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, आत्मा राम भी भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं, यही गौण अर्थ है। चौ शब्द इस निश्चयात्मकता का भी सूचक है कि संत पुरुष ही कृष्ण भक्ति करने में व्यस्त रहते हैं। आत्मा राम अपि संधि में अपि का प्रयोग दोषारोपण निंदा करने में होता है। निर्ग्रंथ शब्द मुनि तथा आत्मा राम दोनों की विशेषता बताने वाला विशेषण है। इसका एक अन्य अर्थ भी है जो तुम मुझसे सुन सकते हो। यह भक्त की संगति का सूचक है। अब मैं बतलाऊंगा कि किस तरह भक्त की संगति से निर्ग्रंथ भी भक्त बन सकता है। निर्ग्रंथ शब्द जो अपि के साथ मिलकर निश्चयात्मकता का सूचक है, ऐसे व्यक्ति को बताता है जो पेशे से या तो शिकारी हो या अत्यंत निर्धन हो। तो भी जब ऐसा व्यक्ति नारद जैसे महान संत की संगति करता है तो वह कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाता है। कृष्णा रामाश्च शब्द उसका सूचक है जो कृष्ण के चिंतन में आनंद पाता है। भले ही ऐसा व्यक्ति शिकारी क्यों न हो, फिर भी वह पूजनीय है और भक्तों में श्रेष्ठ है। अब मैं एक कथा सुनाऊंगा कि एक शिकारी किस तरह नारद मुनि जैसे महापुरुष की संगति से महान भक्त बना। इस कथा से शुद्ध भक्त की संगति की महानता को समझा जा सकता है। एक बार महान संत नारद मुनि भगवान नारायण से वैकुंठ में भेंट करने के बाद गंगा, यमुना तथा सरस्वती इन तीन नदियों के संगम में स्नान करने प्रयाग गए। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने रास्ते में एक हिरण पड़ा देखा जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे और वह तीव्र पीड़ा के कारण तड़प रहा था। कुछ ही दूरी पर नारद मुनि ने तीर से बिंधा एक सुअर देखा। उसके भी पांव टूटे थे और वह पीड़ा से तड़प रहा था। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने एक खरगोश को भी तड़पते देखा। नारद मुनि इन जीवों को इस तरह कष्ट भोगते देखकर हृदय में अत्यधिक दुखी हुए। जब नारद मुनि और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे एक शिकारी को देखा। यह शिकारी तीर लिए था और अन्य पशुओं को मारने के लिए तैयार था। इस शिकारी का शरीर काला था, उसकी आंखें लाल लाल थी और वह अत्यंत भयानक लग रहा था। वह ऐसा दिख रहा था मानो वह यमराज हो जो वहां पर अपने हाथों में धनुष बाण लिए खड़े हो। जब नारद मुनि जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास गए तो सारे पशुओं ने तुरंत उन्हें देखा और वहां से भाग गए। जब सारे पशु भाग गए तो शिकारी ने गाली देकर नारद को दंडित करना चाहा, किंतु नारद के समक्ष वह एक भी बुरा शब्द उच्चारित न कर सका। शिकारी ने नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ा? आपको देखते ही मेरे शिकार के सारे पशु भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना एक संदेह दूर करने आया हूँ। मैं संशय में था कि ये सारे अधमरे सुअर तथा अन्य पशु क्या तुम्हारे हैं? शिकारी ने उत्तर दिया, हाँ आप जो कह रहे हैं सही है। तब नारद मुनि ने पूछा, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने उनके शरीरों में अपने तीर भेद कर उन्हें अधमरा क्यों रखा? शिकारी ने उत्तर दिया, हे साधु पुरुष, मेरा नाम मृगारी अर्थात पशुओं का शत्रु है। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा मुझे दी है। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते देखता हूँ तो मुझे बड़े आनंद का अनुभव होता है। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहे उसे ले सकते हैं। यदि आपको मृग छाला चाहिए तो मेरे पास अनेक हैं। मैं आपको मृग छाला या व्याघ्र की खाल दे दूंगा। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई छाल नहीं चाहता, मैं तुमसे दान में केवल एक वस्तु चाहता हूँ। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि आज से आगे तुम पशुओं को पूरी तरह मारोगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ोगे। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप मुझसे यह क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं में क्या बुराई है, क्या आप मुझे बतला सकेंगे? नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम पशुओं को अधमरा छोड़ते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, अतः बदले में तुम्हें दुख भोगना होगा। नारद मुनि ने आगे कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशुओं का वध करना है, यह तो तुम्हारा अल्प अपराध है, किंतु जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़कर व्यर्थ तड़पाते हो तो तुम बहुत भारी पाप करते हो। नारद मुनि ने कहा, तुमने जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है वे सब एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारते रहेंगे। इस तरह नारद मुनि की संगति से वह शिकारी अपने पाप कृत्यों को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगा। अतः वह अपने अपराधों के कारण कुछ भयभीत हो उठा। शिकारी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। तब उसने कहा, मुझे बचपन से ही इस पेशे की शिक्षा दी गई है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। शिकारी ने आगे कहा, हे महानुभाव, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ और आपके चरण कमलों पर पड़ता हूँ। कृपया मेरे पाप कर्म के फलों से मेरा उद्धार करें। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वस्त किया, यदि तुम मेरे उपदेशों को सुनोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ निकालूंगा। तब शिकारी ने कहा, हे मान्यवर, आप जो कहते हैं वही मैं करूंगा। नारद ने उसे तुरंत आदेश दिया, पहले तुम अपना धनुष तोड़ डालो, तब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। शिकारी ने उत्तर दिया, यदि मैं अपना धनुष तोड़ता हूँ तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूँगा। नारद मुनि ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूँगा। नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त किए जाने पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला, तुरंत ही संत के चरण कमलों पर गिर पड़ा और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। बाद में नारद मुनि ने अपने हाथ से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। तब नारद मुनि ने शिकारी को उपदेश दिया, तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे पास जितना धन है उसे उन शुद्ध ब्राह्मणों में बांट दो जो परम सत्य को जानने वाले हैं। ब्राह्मणों को अपना धन बांटने के बाद तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए एक एक वस्त्र लेकर गृह त्याग कर दो। नारद मुनि ने कहा, तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ, वहां तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा देना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। नारद मुनि ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को नित्य प्रति पर्याप्त भोजन भेज दिया करूंगा, जिससे तुम इच्छा अनुसार भोजन कर सकोगे। तत्पश्चात वे तीनों पशु जो अधमरे थे नारद मुनि द्वारा पुनः जीवित कर दिए गए। वे पशु उठकर तेजी से भाग गए। जब शिकारी ने अधमरे पशुओं को भागते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने नारद मुनि को सादर नमस्कार किया और वह अपने घर लौट आया। इसके बाद नारद मुनि अपने गंतव्य को चले गए। वह शिकारी घर लौटकर अपने गुरु नारद के उपदेशों का अक्षरश पालन करने लगा। यह समाचार सारे गांव में फैल गया कि शिकारी वैष्णव बन गया है। सारे ग्रामवासी भिक्षा लाकर उस वैष्णव को देने लगे जो पहले एक शिकारी था। एक दिन में 10 या 20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन आता, किंतु शिकारी तथा उसकी पत्नी उतना ही स्वीकार करते जितना वे दोनों खा सकते थे। एक दिन अपने मित्र पर्वत मुनि से बातें करते हुए नारद मुनि ने उनसे कहा कि चलो चलकर उनके शिकारी शिष्य को देख आए। जब दोनों ऋषि शिकारी के निवास के निकट पहुंचे तो शिकारी ने दूर से ही उन्हें आते देखा। वह शिकारी बड़ी तेजी से अपने गुरु की ओर दौड़ पड़ा, किंतु वह पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम नहीं कर सका क्योंकि वहां चींटियां पांवों के चारों ओर इधर उधर दौड़ रही थी। चींटियों को देखकर शिकारी ने उन्हें एक वस्त्र से हटाया, भूमि को इस तरह चींटियों से साफ करके वह नमस्कार करने के लिए दंडवत गिर पड़ा। नारद मुनि ने कहा, हे शिकारी, ऐसा आचरण तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। भक्ति में मनुष्य स्वतः अहिंसक बन जाता है, वह साधु पुरुषों में सर्वोत्तम होता है। हे शिकारी, तुमने अहिंसा जैसे जिन सद्गुणों को विकसित कर रखा है वे बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवत भक्ति में लगे व्यक्ति कभी भी अन्यों को ईर्ष्यावश पीड़ा पहुंचाने की मनोवृत्ति नहीं रखते। तब उस शिकारी ने दोनों ऋषियों का अपने आंगन में स्वागत किया। उसने उनके बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी और बड़ी ही भक्ति के साथ उनसे बैठने की प्रार्थना की। तब वह जल ले आया और बड़ी ही भक्ति के साथ उसने जल से ऋषियों का पाद प्रक्षालन किया। तब पति पत्नी दोनों ने उस जल को पिया और अपने सिरों पर छिड़का। जब उस शिकारी ने अपने गुरु के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया तो उसका शरीर कांपने लगा और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। भाव विभोर होकर वह अपने हाथ उठाकर अपने वस्त्रों को ऊपर नीचे लहराता हुआ नृत्य करने लगा। जब पर्वत मुनि ने शिकारी के भावमय प्रेम के लक्षणों को देखा तो वे नारद से बोले, निश्चय ही आप स्पर्श मणि हो। पर्वत मुनि ने आगे कहा, हे मित्र नारद, आप देवताओं में ऋषि के रूप में विख्यात हैं। आपकी कृपा से इस शिकारी जैसा निम्न जन्मा व्यक्ति भी तुरंत कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो सकता है। तब नारद मुनि ने शिकारी से पूछा, हे वैष्णव, क्या तुम्हारे पास अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई आय है? शिकारी ने उत्तर दिया, हे गुरु, आप जिसे भी भेजते हैं वह जब मुझसे मिलने आता है कुछ न कुछ मुझे देता है। उस पूर्व शिकारी ने कहा, कृपया इतना अन्न मत भेजे, केवल उतना ही भेजे जितना हम दोनों के लिए पर्याप्त हो, अधिक नहीं। नारद मुनि ने एक दिन से अधिक भोजन की आपूर्ति की इच्छा न करने के प्रति सहमति व्यक्त की और उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम भाग्यशाली हो। तत्पश्चात नारद मुनि तथा पर्वत मुनि उस स्थान से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने शिकारी की घटना का वर्णन किया। इस कथा को सुनकर भक्तों की संगति के प्रभाव को समझा जा सकता है। इस तरह हमें आत्मा राम श्लोक के तीन अर्थ और मिल गए हैं। अन्य अर्थों के साथ इन्हें मिलाने पर अर्थों की कुल संख्या 26 हो जाती है। एक अन्य अर्थ भी है जो नाना प्रकार के अर्थों से पूर्ण है। वस्तुतः दो स्थूल अर्थ हैं और 32 सूक्ष्म अर्थ हैं। आत्मा शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समस्त विभिन्न अंशों का द्योतक है। इनमें से एक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं और शेष कृष्ण के विभिन्न अवतार या अंश हैं। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है वह आत्मा राम कहलाता है। आत्मा राम के दो प्रकार होते हैं। पहला आत्मा राम वह है जो वैधी भक्ति में लगा रहता है, वैधी भक्त, तथा दूसरा वह है जो रागानुगा भक्ति में लगा रहता है, राग भक्त। वैधी तथा रागानुगा भक्ति में लगे आत्मा रामों के चार चार प्रकार हैं। ये हैं नित्य पार्षद, भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त पार्षद, साधन सिद्ध तथा भक्ति में लगे हुए साधक, जिनके दो प्रकार हैं। भक्ति का अभ्यास करने वाले साधक या तो परिपक्व होते हैं जात, अथवा अपरिपक्व अजात होते हैं। अतः साधक दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि भक्त गण या तो वैधि भक्ति करते हैं या रागानुगा भक्ति, और क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत चार चार प्रकार होते हैं, अतः कुल मिलाकर आठ भेद हो जाते हैं। वैधि भक्ति करने से मनुष्य नित्य सिद्ध पार्षद के पद को प्राप्त होता है, यथा दास, सखा, गुरुजन या प्रियतमा, इनमें से प्रत्येक के चार प्रकार हैं। जिन्होंने भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है, साधन सिद्ध, उनमें दास, सखा, गुरुजन तथा प्रेमिकाएं, गोपियां, ये चार आते हैं। इसी प्रकार परिपक्व भक्तों, जात रति साधक भक्तों के चार प्रकार हैं। वैधि भक्ति के अंतर्गत अपरिपक्व भक्त, अजात रति साधक भक्त भी है, ये भी चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकार वैधि भक्ति के अंतर्गत कुल 16 प्रकार हैं। रागानुगा भक्ति के अंतर्गत भी 16 प्रकार के भक्त हैं। इस प्रकार इन दोनों मार्गों का आनंद लेने वाले आत्मा रामों के 32 प्रकार हैं। जब इन 32 प्रकार के भक्तों की विशेषता मुनि, निर्ग्रंथ, च तथा अपि शब्दों द्वारा बताई जाती है, तब उन्हें विभिन्न प्रकारों से बढ़ाया जा सकता है और उनकी भली भांति व्याख्या की जा सकती है। जब हम भक्तों के 26 प्रकारों को इन 32 प्रकारों में जोड़ देते हैं तो कुल संख्या 58 हो जाती है। अब तुम मुझसे अर्थों की और अभिव्यक्तियां सुन सकते हो। इस तरह मैं हर शब्द के बाद च शब्द जोड़ता हूँ तो समास बनता है। इस तरह विभिन्न आत्मा रामों के नाम 58 बार लिए जा सकते हैं। इस तरह 58 अर्थों में से प्रत्येक के लिए आत्मा रामाह शब्द की च के साथ पुनरावृत्ति की जा सकती है। इस पूर्व कथित विधि का पालन करते हुए तथा अंतिम के अतिरिक्त अन्य सभी अर्थों का निषेध करते हुए हमारे पास जो बचेगा वह समस्त अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही रूप तथा एक ही विभक्ति वाले सारे शब्दों में से केवल अंतिम को रहने दिया जाता है। सारे च कार अर्थात च से युक्त शब्द हटा लिए जाने पर भी केवल एक शब्द आत्मा राम से 58 विभिन्न अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बहुवचन शब्द वृक्षाह से सारे वृक्ष यथा बरगद, पीपल, कैथा तथा आम के वृक्षों का संकेत होता है। आत्मा राम श्लोक वैसा ही है जैसा कि यह वाक्य, इस जंगल में अनेक विभिन्न वृक्षों में फल लगते हैं। सारे आत्मा राम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आत्मा रामाह शब्द को 58 बार उच्चरित करके तथा च को समुच्चय वाचक मानकर इसके साथ मुनयः शब्द जोड़ा जा सकता है। तब इसका अर्थ यह होगा कि मुनि गण भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस तरह कुल 59 अर्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात निर्ग्रंथाह शब्द को लेते हुए तथा अपि को पुष्ट करने के अर्थ में लेते हुए मैंने इस शब्द के 59वें अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। सारे शब्दों को एक साथ लेने पर एक अन्य अर्थ होता है, चाहे कोई आत्मा राम हो, मुनि हो या निर्ग्रंथ, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब अपि शब्द निर्णय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तो 4 शब्दों के साथ एव शब्द 4 बार उच्चरित हो सकता है। उरुक्रम, भक्ति, अहेतुकी तथा कुर्वंती शब्दों को एव के साथ बारंबार मिलाते हैं, इस तरह अन्य अर्थ निकलता है। अब तक मैं इस श्लोक के साथ भिन्न भिन्न अर्थ दे चुका हूँ, तो भी एक अन्य अर्थ है जो अत्यधिक स्पष्ट है। आत्मा शब्द उस जीव का भी सूचक है जो अपने शरीर के विषय में जानता है। यह अन्य लक्षण है। ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक हर एक को भगवान की तटस्था शक्ति के रूप में गिना जाता है। भगवान विष्णु की शक्ति की 3 श्रेणियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अविद्या। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त होते रहते हैं। और तीसरी शक्ति जो अविद्या से बरी होती है, सदैव सकाम कर्मों में देखने में आती है। क्षेत्रज्ञ शब्द जीव, भोक्ता, प्रधान तथा भौतिक प्रकृति का द्योतक है। विभिन्न योनियों में जीव विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं, किंतु यदि कदाचित उन्हें शुद्ध भक्त साधु की संगति प्राप्त हो जाती है तो वे सारे कार्य त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। इस तरह मैंने 60 भिन्न भिन्न अर्थ बतलाए और वे सब के सब कृष्ण की सेवा को ही लक्षित करते हैं। इतने सारे उदाहरण देने के बाद यही एकमात्र अर्थ है। अब तुम्हारी संगति से एक अन्य अर्थ सफुरित हुआ है। तुम्हारी भक्ति के कारण ही अर्थों की तरंगे उठ रही हैं। शिव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूँ या व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी जानते हैं तथा व्यास देव जानते हैं, अथवा नहीं जानते। इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। भौतिक बुद्धि, चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं। आत्मा राम श्लोक के विभिन्न अर्थों की व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। सारे वैदिक ग्रंथ आपके श्वास के माध्यम से ध्वनित होते हैं। हे प्रभु, आप भागवत के आदि वक्ता हैं, अतः आप ही इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थ को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो? तुम्हें श्रीमद् भागवत की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए। तुम इस महत्वपूर्ण बात पर क्यों नहीं विचार करते? श्रीमद् भागवत कृष्ण के तुल्य महान है, जो कि परमेश्वर तथा सबके आश्रय हैं। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित हैं। श्रीमद् भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है। इस तरह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। इन प्रश्नों तथा उत्तरों को सुनकर मनुष्य को अत्यधिक आश्चर्य होता है। अब जबकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम प्रस्थान कर चुके हैं, तो कृपया हमें बताइए कि इस समय धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है? जब कृष्ण धर्म तथा दिव्य ज्ञान समेत अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवत नामक यह पुराण इस कलियुग में सूर्य के समान उन लोगों को आलोक देने के लिए उदित हुआ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन है। इस तरह मैंने एक पागल की तरह केवल एक श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। मैं नहीं जानता कि इसे प्रमाण के रूप में कौन ग्रहण करेगा। यदि कोई मेरे ही समान पागल बनता है तो इस विधि से वह भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकता है। हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका स्मृति लिखने का आदेश दिया है। मैं अत्यंत नीच व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छे आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे लिए वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में प्रामाणिक निर्देश लिखना कैसे संभव हो सकता है? तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया आप स्वयं मुझे बताएं कि मैं वैष्णव आचरण के विषय में इस कठिन ग्रंथ को कैसे लिखूं? कृपया आप मेरे हृदय में प्रकट हों। यदि आप मेरे हृदय में प्रकट हों और इस पुस्तक को लिखने के लिए स्वयं निर्देश दें, तब मैं निम्न जन्मा होते हुए भी आशा कर सकता हूँ कि इसे लिख पाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप जो आदेश देंगे वही पूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम जो भी करना चाहते हो उसे कृष्ण कृपा के बल पर सही सही कर सकोगे। वे वास्तविक तात्पर्य प्रकट कर देंगे। क्योंकि तुमने मुझसे संक्षेप रूप रेखा प्रदान करने के लिए कहा है, अतः इन कुछ संकेतों को सुनो। प्रारंभ में यह बताओ कि प्रामाणिक गुरु की शरण किस तरह ग्रहण करनी चाहिए। तुम्हारी पुस्तक में प्रामाणिक गुरु तथा प्रामाणिक शिष्य दोनों के लक्षण दिए जाने चाहिए। तब गुरु स्वीकार करने के पूर्व मनुष्य गुरु की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सकता है। इसी तरह गुरु शिष्य की स्थिति के बारे में आश्वस्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को
आराध्य या सेव्य के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए और तुम्हें कृष्ण, राम या भगवान के अन्य किसी अंश की पूजा के बीज मंत्र पर विचार करना चाहिए। तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, प्रातःकालीन कर्म, भगवान का स्मरण, शुद्धता तथा मुख एवं शरीर के अन्य भागों की शुद्धता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि प्रातः काल नियमित रूप से भक्त किस तरह अपने दांत साफ करे, स्नान करे, भगवान की स्तुति करे और गुरु को नमस्कार करे। तुम्हें इसका भी वर्णन करना चाहिए कि वह गुरु की सेवा कैसे करे और अपने शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए और वह अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों को या भगवान के चिन्हों, चक्र, गदा आदि को कैसे अंकित करें। इसके बाद तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि भक्त को किस तरह शरीर को गोपी चंदन से सजाना चाहिए, गले में कंठी माला पहनना, तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना, अपने वस्त्र तथा वेदी को स्वच्छ करना, अपना घर साफ करना, मंदिर जाना तथा किस तरह भगवान कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए घंटा बजाना चाहिए। इसके उपरांत तुम श्री विग्रह की पूजा का भी वर्णन करना, जिसमें दिन में कम से कम 5 बार कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाए, कृष्ण को निश्चित समय में सुलाया जाए। तुम 5, 16 या 50 वस्तुओं की सूची के अनुसार भगवान की पूजा तथा आरती करने की विधि का भी वर्णन करना, उसमें अर्चा विग्रह तथा शाल ग्राम शिला के लक्षणों की विवेचना हो, मंदिर में अर्चा विग्रहों के दर्शन तथा वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने की भी व्याख्या हो। तुम भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। तुम्हें वैष्णव के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए। अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराधों, सेवा अपराध को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की भी विवेचना होनी चाहिए। पूजा सामग्री यथा जल, शंख, फूल, धूप, अगरबत्ती तथा दीपक का वर्णन किया जाए। तुम धीरे धीरे जप करने, स्तुति करने, प्रदक्षिणा करने तथा नमस्कार करने का भी उल्लेख करना, इन सब का ठीक से वर्णन करना। अन्य उल्लेखनीय बातें हैं पुरुषाचरण करने की विधि, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, अनिवेदित भोजन का त्याग तथा भगवत भक्तों की निंदा न करना। तुम्हें भक्त के लक्षण, भक्तों की संगति करने की विधि, सेवा द्वारा भक्त को प्रसन्न करने की विधि तथा अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का वर्णन करना चाहिए। इसके उपरांत नियमित रूप में श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण के महत्व की भी व्याख्या होनी चाहिए। नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी, विशेषतया एकादशी व्रत रखने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। तुम्हें मासिक कृत्यों का, विशेषतया जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का भी वर्णन करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी, इन सब का वर्णन करना चाहिए। तुम्हें संस्तुति करनी चाहिए कि मिश्रित एकादशी से बचा जाए और शुद्ध एकादशी मनाई जाए। तुम्हें इसके न मनाने से होने वाले दोष का भी वर्णन करना चाहिए। इन बातों के विषय में सतर्कता की आवश्यकता है। यदि तर्क नहीं रहा जाएगा तो भक्ति की उपेक्षा होगी। तुम वैष्णव आचरण, वैष्णव मंदिरों तथा अर्चा विग्रहों की स्थापना के विषय में या अन्य बातों के विषय में जो भी कहो उसकी पुष्टि पुराणों के प्रमाण से होनी चाहिए। तुम्हें वैष्णव के आचरण एवं कार्यों का सामान्य तथा विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए। तुम करणीय तथा अकरणीय बातों की भी रूपरेखा प्रस्तुत करो। इन सब का वर्णन विधि एवं शिष्टाचार के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार मैंने वैष्णव विधि विधानों की संक्षिप्त रूपरेखा दी है। मैंने यह सब संक्षेप में कहा है जिससे तुम्हें कुछ निर्देश मिल सके। जब तुम इस विषय में लिखोगे तो कृष्ण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करके तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार मैंने सनातन गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन किया है। जब कोई इन कथाओं को सुनेगा तो उसके हृदय के सारे कलुष धुल जाएंगे। प्रामाणिक कवि कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसमें बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह अपनी विशेष कृपा से सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी बंगाल के शासक हुसैन शाह की सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री थे और वे उस सभा के अत्यंत उज्जवल मणि माने जाते थे। उनके पास राजकीय पद का सारा ऐश्वर्य था, किंतु उन्होंने वैराग्य की तरुणी देवी को अंगीकार करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यद्यपि बाहर से वे ऐसे साधु लगते थे जिसने सर्वस्व त्याग दिया हो, किंतु उनका हृदय भक्ति के आनंद से ओतप्रोत था। इस तरह वे काई से आच्छादित गहरे सरोवर के समान थे। वे उन समस्त भक्तों के लिए आनंद के विषय थे जो भक्ति के विज्ञान को जानते थे। जैसे ही सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए, वैसे ही वे उन्हें देखते ही दयाद्र हो उठे। सुनहले चंपक फूल के वर्ण वाले महाप्रभु ने अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और अत्यधिक स्नेह व्यक्त किया। काल के प्रभाव से वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का दिव्य समाचार प्रायः विलुप्त हो चुका था। उन दिव्य लीलाओं को प्रस्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा रूपी अमृत से शक्ति प्रदान की, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य पूरा कर सके। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी पर कृपा प्रदान करने का वर्णन किया है। यदि कोई इसे सुनेगा तो उसके हृदय का सारा विषाद लुप्त हो जाएगा। सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को पढ़कर कृष्ण के विविध अंशों तथा वैदी एवं रागानुगा भक्ति की विधियों से पूरी तरह अवगत हुआ जा सकेगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु पूरी तरह से जानी जा सकती है। इन उपदेशों को पढ़कर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम भक्ति रस तथा भक्ति के निष्कर्ष को समझ सकता है। इन उपदेशों का अध्ययन करके हर व्यक्ति इन बातों के अंतिम निष्कर्ष को अच्छी तरह समझ सकता है। इन उपदेशों के निष्कर्ष को वही जान सकता है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के चरण कमल ही जीवन तथा प्राण है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत की मध्य लीला के 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें आत्मा राम श्लोक तथा सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु की कृपा का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम